नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज तिरुचू में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए AIADMK के नेताओं के साथ भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है।
अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में खतबात ए मोदी लाल किला के फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। श्री प्रधान ने बताया कि ये पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में पूंजीगत व्यय का 80% से अधिक उपयोग किया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये व्यय मुख्य रूप से सुरक्षा उपायों, क्षमता वृद्धि, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर केंद्रित रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस और पीएससी कांस्टेबल भर्ती के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लिया गया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को रोकने के अनुरोध से संबंधित झूठे दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि SIR अभियान तृणमूल कांग्रेस के फर्जी मतदाताओं, दिवंगत मतदाताओं और अवैध घुसपैठों को उजागर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक न्यूयॉर्क में चल रही है। इसमें वेनेजुएला पर अमरीकी अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर चर्चा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे एक खतरनाक कदम बताया है। सुरक्षा परिषद की ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे विषय पर है। विदेश मंत्रालय ने आज एक यात्रा दिशा निर्देश जारी कर भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हाल की घटनाक्रमों को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फ्रांस के पेरिस में CQC Trame भारत और फ्रांस के बीच बुनी गई कहानियां नामक प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत की वस्त्र विरासत, कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे U19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया था। खराब मौसम के कारण मुकाबले को 27 ओवर का कर दिया गया था और डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारत को 174 रन का लक्ष्य दिया गया था। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।